इंशाअल्लाह ताला पहले हम अपने जो पिछले सबक में से रह गया था दो आयतें इंशाअल्लाह उनको मुकम्मल करेंगे, फिर इसको देखेंगे आयत नंबर 256 और 257। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इकराहा फिद्दीन, आयतुल कुर्सी पूरी मुकम्मल करके जिसमें अल्लाह ताला की ऐसी तारीफ बयान फरमाई गई है जो कि इंसान वाकई अपने इल्म से या अपने फहम से जान ही नहीं सकता, इंसान को नहीं समझ में आ सकते अल्लाह ताला की ज़ात। अल्लाह ताला ने अपना तारुफ ऐसा बयान फरमाया यहाँ पे जो हमारे तो खैर इवन ये जो तारुफ है ना ये भी हम पूरी तरह समझ नहीं पा सकते कि कैसी उसकी कुर्सी है, वो कैसे नहीं थकता हिफाजत से, वो हई कैसा है, वो कयूम कैसा है, उसका इल्म कैसा है, नहीं हम समझ सकते। इतनी बड़ी इतनी बुलंद अल्लाह ताला की जो शान है वो बयान हुई आयतल कुर्सी में, और उसके बाद क्या फरमाया गया, ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जबर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। इतनी बातें सुनने के बाद भी अगर कोई इंसान इस दीन में दाखिल नहीं होना चाहता, कोई अल्लाह को इलाह नहीं बनाना चाहता, कोई जबरदस्ती नहीं, इट्स ओके देन। क्यों? कत्तबय्यन रुश्द मिन अलगई, भाई अब तो हिदायत और गुमराही तो वाजी हो गई है, बिल्कुल साफ पता चल रहा है सामने कि हिदायत क्या है और गुमराही क्या है, क्लियर हो गया। कोई अब ये नहीं इंसान कह सकता मुझे तो कंफ्यूजन है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि सीधा रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है। कोई ये नहीं कह सकता कि हक और बातिल की नहीं मुझे समझ आ रही, नहीं अल्लाह ताला ने सब कुछ वाजे कर दिया। और देखें जब ये सूरह बकरा नाजिल हुई तो कौन सी सूरत है, ये मक्की है या मदनी? मदनी सूरत है ना, तो फिर कितना कुरान तो उतर चुका था ऑलरेडी मक्की दौर में, समझ ले 2/3 कुरान उतर चुका है। अब इसके बाद भी अगर कोई कहे मुझे नहीं समझ आ रही तो ऐसा नहीं हो सकता, हिदायत और गुमराही बिल्कुल वाजे हैं। आयतल कुर्सी के बाद अल्लाह ताला का जो तारुफ है वो भी हो चुका है, अब इसके बाद अब आपकी मर्जी है कि आप ईमान लाएं या नहीं लाएं। समझ आ गई बात? ये जो पार्ट है ना ला इकराह फिद्दीन, इसको आप याद रखें, आपको बहुत जगह लोगों से सुनना पड़ेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जिसको कुरान का इतना सा भी नॉलेज नहीं होता ना उसको भी ये अल्फाज, ये चार लफ्ज जरूर याद होते हैं, ये कुरान में लिखा ला इकराह फिद्दीन, आप फिर हमें क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं, आप क्यों कहते हैं जी नमाज पढ़ो, नहीं जी कुरान में है ला इकराह फिद्दीन, कोई दीन में जबरदस्ती नहीं है, दीन ने आजादी दी भी है, आप कहते हैं ये करो ये करो ये करो, तो हो सकता है आप से साथ कोई इस बात के ऊपर बहस करे या ये बात कहे, तो आज अपने जहन में एक बात बिठा लें, समझ लें अच्छी तरह से कि इसका जवाब क्या और ये आयत का ये हिस्सा क्या कह रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है हरगिज भी कि ला इकराह फी दीन कि आप किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, अब कोई चाहे सूद खाए, हराम खाए, नमाज से गाफिल हो जाए, चाहे कोई ज़कात नहीं दे रहा, चाहे कुछ नहीं, आप उसको कुछ नहीं कहेंगे। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक तो जंग के लिए खड़े हो गए थे जो ज़कात नहीं दे रहे थे। देखिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए थे ना तो उसके बाद एक ट्राइब ऐसा था जिसने कह दिया था हम ज़कात नहीं देंगे, मुसलमान थे वो लोग, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके लिए जंग का ऐलान कर दिया था। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं दीन के हुक्म मानूंगी ही नहीं, क्यों? इसलिए कि लाइक रहा फिर दीन, तुम कौन होते मुझे कहने वाले, दीन इज माई पर्सनल मैटर। नहीं, जब आप इस दीन में दाखिल हो गए याद रखें, तब उसके बाद आप ये नहीं कह सकते ला इकराहा फी दीन। हाँ अगर दीन में दाखिल नहीं हुए थे, मुसलमान नहीं है कोई, तो उसको कोई जबर नहीं है। अल्लाह ताला ने कितनी इंसान को इज्जत बख्शी है ना, इंसान को राइट ऑफ चॉइस दी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस दी है कि आपका इरादा है आप चाहें इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्रगुजार बन जाए और चाहे तो नाशुक्री करें, इंसान चाहे तो ईमान ले आए चाहे तो कुफर करे। کسی کے اوپر زبردستی نہیں، ضرور تم نے مسلمانوں نے، اب تم نے ضرور بن، نہیں، آزادی ہے، اللہ نے سب کو آزاد چھوڑ دی ہے، سب کو لے آزادی ہے، چوز کرنا ہے اسلام کو یا نہیں کرنا یہ اس کی چوائس پہ ہے۔ اسی لیے جب ہم کسی کو تبلیغ کرنے جائیں نا تو ایک تو کسی کو بیگ نہ کریں کہ ہائے تم ایمان لے آؤ پلیز، خدا کے لیے مان جاؤ، دیکھو ورنہ یہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس وہ چیز ہے جس پہ آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یہ جو میری چیز ہے بہترین اور رائٹ تھنگ ہے۔ جیسے ہمارے پاس کوئی کچھ بیچنے کے لیے مسئلہ آتا ہے تو آ کے وہ کہتا ہے دیکھیں جی آپ کو کوئی زبردستی نہیں کہ آپ اس کو خریدیں، میری چیز میں اور فلاں کی کم تر چیز میں فرق صاف واضح ہے، اب آپ جو چاہیں لیں، بڑے کانفیڈنس سے وہ کہتا ہے یہ صاف واضح ہے فرق، کوئی جبر نہیں جی آپ کے لیے، آپ دیکھ رہی ہیں ان کے اندر دونوں چیزوں میں فرق، وہ بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ اس طرح جو ہم پیغام لے کر جاتے ہیں نا دوسروں کے پاس، تو ہمیں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو پیغام ہے بالکل صحیح ہے اور باقی سارے ادیان باطل ہیں، غلط ہیں۔ یہ نہیں کہ نہیں جی سارے ہی ٹھیک ہیں لیکن ہم آپ کو، آج کل تو ہماری یہ التجاؤں پہ اتر آتے ہیں نا، اور بڑی مسکینی کے ساتھ، نہیں سارے ہی ٹھیک ہیں، ٹھیک تو سارے ہی ہیں، تو پھر بھائی آپ کے پاس کوئی کیوں آئے؟ جب سارے ہی ٹھیک ہیں تو پھر کوئی ہندو ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی عیسائی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی یہودی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، پھر اسلام لانے کی کیا ضرورت ہے جب سبھی ٹھیک ہیں؟ نہیں، حق صرف یہ دین ہے اب اسلام، ہاں وہ اپنے زمانے میں ٹھیک ہو سکتے تھے لیکن آج وہ ٹھیک نہیں ہے، آج یہ باطل دیان ہے۔ تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ جائیں، پیش کریں اس کو، کیونکہ رشد اور غی بالکل واضح ہے، کلیئر ہے۔ اب اگر کوئی ایمان لاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں لاتا تو اب آپ اس کے ساتھ نہ جنگ کریں گے، نہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جو اسلام میں جنگیں ہوئی نا، لوگ کہتے ہیں تلوار کے زور سے پھیلا، او بھائی ہمارے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین، آپ کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ قرآن خود کہتا ہے، نہیں آپ تلوار سے کسی کے اوپر نوک تلوار کی رکھ کے اور یہ نہیں کہہ سکتے تم کلمہ پڑھو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا، نو۔ ایسے لوگوں کو اسلام لا کے بھی ہم نے کیا کرنا کہ وہ اسلام لے آئیں، جن کو جبر سے اسلام پہ لایا جائے، ان کے تو مسلمانوں نے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو اسلام جبر کے ساتھ کسی کو اسلام میں داخل نہیں ہونے کو کہتا۔ جو آج تک جنگیں ہوئیں وہ اس دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہوئیں کہ اس دین کا نظام اسٹیبلش کیا جائے کسی جگہ پہ۔ اسی وجہ سے تو دیکھیں مسلمان ملک میں بھی غیر مسلم رہ سکتے ہیں، ورنہ تو اسلام کہتا نہیں ان کو بھی مار دو، ان کو بھی مار دو، یا تو یہ مسلمان ہو یا پھر وہ۔ یاد رکھیں ہمیشہ، کفر نے ہمیشہ ایسا کیا، اسلام کبھی ایسا نہیں کرتا۔ یہ دیکھا نا آپ نے، کفر والے کہتے ہیں تم کافر ہو جاؤ، یہ دین چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے، ٹارچر کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ایک میں نے ڈاکیومنٹری دیکھی، اس میں اسپین کا بتا رہے تھے، تو انہوں نے اس میں بتایا، ایک چرچ دکھایا، تو انہوں نے کہا یہ پہلے مسجد ہوتا تھا، لیکن جب پھر یہ انہوں نے عیسائیوں نے یہاں پہ قبضہ کیا تو انہوں نے سب مسلمانوں میں اعلان کر دیا تھا کہ یا تو کرسچن ہو جاؤ یا پھر یہاں سے نکل جاؤ، اور سارے مسجدیں چرچ بنا دیے انہوں نے۔ اسپین میں آپ کو پتا نا کتنی مسلمانوں کی بادشاہت رہی ہے، کتنا عرصہ۔ تو جو یہ دوسرے ادیان ہیں نا وہ اس طرح زبردستیاں کرتے ہیں، اسلام نہیں کرتا۔ اسلام نہیں یہ کہتا یہاں تو مسلمان ہو جاؤ یا یہاں پہ یہ کر لو، نہیں، اسلام کہتا ہے تمہارے پاس چوائس ہے، اگر مسلمان نہیں ہوتے تم، ہاں حرم میں یہ کہا گیا تھا کہ حرم میں نہیں کوئی کافر رہ سکتا، مگر باقی کسی جگہ بھی کوئی مسلم کنٹری ہے وہاں پہ جزیہ دیں، ٹیکس دیں، مسلمان جو ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ان سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی، تو تمہیں کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا نا اپنی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے کہ تم اس کنٹری کے ریزیڈنٹ ہو، تو تم وہاں پہ جزیہ دو اور تم رہ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہم اس کے اندر نا بہت اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں، وہ نہ ہو، آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے، اسلام یہ کبھی نہیں کہتا، نہ کسی کے اوپر جبر کرتا ہے، نہ کوئی زبردستیاں ہیں۔ اور لوگ کہیں گے نہیں جی اتنے ملکوں میں پھر کیوں گئے، انہوں نے جنگیں کیوں کی، تو یہ آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے۔ تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ جو ہے میں مسلمان ہوں لیکن مجھے نہ نماز کا کہا جائے نہ کسی چیز کا کہا جائے، اس آیت کے اس حصے کو لے کے نہ کہے، یہ صرف اس کے لیے جو اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ اچھا اس کو مثال سے آپ سمجھیں، یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ امریکہ میں داخل نہیں ہوئے تو آپ کے اوپر یہاں کے لاز نہیں اپلائی ہوتے، राइट। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कहता कि आप इस मुल्क में आके रहें, लेकिन जब आप मुल्क में आके रहे तो आपको मुल्क के लॉ को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। इसी तरह कोई आपको जबरदस्ती नहीं कहता कि आप इस्लाम में आए, लेकिन जब आप आ गए हैं देन यू हैव टू फॉलो। फिर आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं मुसलमान तो हूं लेकिन ना मैं नमाज करूंगी, ना मैं जकात दूंगी, ना मैं को रोजा रखूंगी, ना मैं ये करूंगी, बस मेरी मर्जी। इसीलिए तो आइम्मा कराम ने इतनी बड़ी सजा वगैरह के लिए इसका कहा है। इमाम अबू हनीफा तो कहते हैं कि कैद कर दिया जाए बेनमाजी को। बाज इमाम कहते हैं कि उसकी सजा कत्ल है। समझे ना, इतनी एक्सटेंट तक फतावा है इसके ऊपर कि बेनमाजी इज इनटॉलरेबल। तो कोई ये ना कहे कि मैं मुसलमान हूं लेकिन इट्स माय पर्सनल बिजनेस। तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले कि आओ नमाज पढ़ो? तुम कौन होती हो मुझे कहने वाली कि ये करो? नहीं, कहने वाले होते हैं इसलिए कि आप इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। अरे आप इस्लाम से बाहर होते कोई किसी ने भी नहीं आपको कहना था नमाज पढ़े, किसी ने नहीं आपको कहना था हिजाब करें, किसी ने नहीं आपको कहना था हलाल खाओ। लेकिन जब इस्लाम में दाखिल हो गए नाउ आप समझ लें जैसे उस कंट्री की आप बॉर्डर्स के अंदर आ गए। तो जो ही आपने बॉर्डर के अंदर स्टेप इन कर लिया उसके बाद उस कंट्री में हैं आप, उसके बाद उस कंट्री के लॉ को फॉलो करना जरूरी है। ये बात हर एक बंदा समझता है, लेकिन दीन के मामले में आके हम इतने ना समझ क्यों हो जाते हैं कि इतनी सी बात समझ नहीं आती? ये इस दीन में आ गए हो तो आपने जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है ना, ये सिर्फ एक चंद वर्ड्स नहीं है, ये एक पूरा लाइफस्टाइल है। आपने कमिट कर लिया है कि मैं अल्लाह को सिर्फ इलाह बनाऊंगी अपनी। जब मैंने सिर्फ अल्लाह को अपना इलाह बना लिया तो अब जो हुक्म वो देगा वो मैं फॉलो करूंगी। दिस इज अ कमिटमेंट। हमने इसको शायद फ्यू वर्ड समझा हुआ। तो फमई यकफर बिताहूत व युमिन बिल्लाह, ये जो वर्ड्स है ना ये है ये ला इलाहा इल्लल्लाह। फमई यकफर बिताहूत क्या है? ला इलाहा। और व युमिन बिल्लाह क्या है? इल्लल्लाह। समझे ना, इसलिए कि क्या है फमई यकफर बिताहूत, ताहूत क्या चीज है? सबसे पहले तो ये समझे, ताहूत हर वो हस्ती या बंदा या सिस्टम या कोई भी चीज हो सकती है जो भी इंसान को अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करने पे मजबूर करती है, किसी और की इबादत की तरफ लेके जाती है। समझे ना, जो अल्लाह की इबादत ना करने दे वो कोई भी हो सकता है। इवन वो आपका नफ्स हो सकता है, वो आपकी फैमिली हो सकती है, वो कोई सिस्टम हो सकता है, वो कोई मुल्क के कानून हो सकते हैं, कैन बी एनी बडी। शैतान भी इसी में आता है ना, वो भी तो अल्लाह की इबादत से इंसान को दूर लेकर जाता है। तो जिसकी भी इंसान बंदगी करे या अल्लाह की बंदगी को छोड़ के जिसकी भी बंदगी में आ जाता है वो ताहूत ही है। अब उसका नाम कुछ भी आप दे दें, कोई भी नाम उसका हो सकता है। हर एक की जिंदगी में कोई ताहूत हो सकता है, समझ रहे? तो अल्लाह ताला ने फरमाया फमई यकफुर बिताहूत, जो ताहूत का कुफर करेगा। देखें अल्लाह वाले बनने के लिए ना पहले ताहूत का कुफर करना पड़ता है, फिर अल्लाह पर ईमान आता है। जैसे ला इलाहा पहले कहना पड़ता है, कोई इलाह नहीं, इल्ला हुआ सिवाय फिर उसके। तो पहले सब को निगेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आएगा इल्लल्लाह। इसीलिए ईमान वो है जो ताहूत के कुफर के साथ है। अगर आप सोचते हैं कि ताहूत के साथ भी दोस्ती चलाती रहूं और अल्लाह से भी दोस्ती निभाए जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह को ऐसा बंदा चाहिए जो फोकस्ड इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ, एक तरफ हो, एक तरफ का। तो आप इसी तरह समझ लें, कोई औरत अपने हस्बैंड से कहे अच्छा तुम भी मेरे हस्बैंड हो और कोई और भी है मेरा, तो वो क्या बर्दाश्त करेगा? वो कहेगा या तो उसके पास चले जाओ या मेरे पास रहो। आज सोचते हैं इंसान सोचे कि इलाह दो बना लूं, वो भी इलाह हो गया, उसकी भी मानूंगी, उसकी भी बंदगी करूंगी, उसकी भी आगे झुकूंगी, उसकी भी मानूंगी, और एक अल्लाह भी है, हाँ उसको भी, उसका भी थोड़ा बहुत एक कर लिया, थोड़ा बहुत निभा लिया दीन का भी कुछ समझ के। ये नहीं हो सकता। پہلے تاغوت کا کفر ہوگا، پھر اللہ پر ایمان ہوگا۔ جس نے یہ کیا تو پتہ ہے کتنا اس کو، سبحان اللہ، اس کو کیا بلند مرتبہ مل گیا۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو تحقیق اس نے تھام لیا ایک مضبوط کڑا۔ لا انفصام لہا، جس کو کوئی ٹوٹنا نہیں ہے، اس کے لیے ٹوٹنا ہے ہی نہیں، اتنا مضبوط۔ آپ اس کو ایسے ہی امیجن کریں، ایک بندہ ڈوب رہا ہے، ڈوب رہا ہے، ڈوبتے ڈوبتے ایک دم اس کے ہاتھ میں نا ایک کوئی اینکر آ گیا کسی شپ کا، یا کوئی تختہ آ گیا، یا کڑا ہے نا، یہاں پہ تختہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کیونکہ عروا ہے، کنڈا کوئی آ گیا، کوئی ہینڈل آ گیا، اس کو اس نے زور سے پکڑ لیا۔ اب جب زور سے پکڑ لے گا تو کیا ہوگا، بچ جائے گا نا وہ، ورنہ تو ڈوب جاتا۔ تو یہ جو کڑا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ توحید ہے، یہ ایمان ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ قرآن ہے، جس نے قرآن کو تھام لیا تو یہ کڑا کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ جب مجھے کوئی پریشانی، کوئی ایسی کوئی مسئلہ، کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے نا، تو میرے ذہن میں پتہ ہے یہی بات آتی ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، اللہ میں نے تیرا کڑا تھام لیا، اور جس کو کبھی ٹوٹنا نہیں ہے۔ جس نے اللہ کا مضبوط سہارا تھام لیا، کیا وہ کبھی ڈوب سکتا ہے؟ کیا وہ کبھی کہیں گر سکتا ہے؟ کیا کبھی مایوس ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ اس کو اندھیروں میں چھوڑ دے گا؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ میں نے تیرا مضبوط کڑا تھام لیا، تو انسان کے دل کو اتنی ایک دم ڈھارس ہو جاتی نا، ایسے واقعی ایسے انسان امیجن کرے کہ کوئی کنڈا ہے جو اس نے پکڑ لیا ہوا ہے اور وہ اس کو سہارا دیا۔ جب انسان کہیں پہ بھی دیکھیں، سمندر لے لیں یا کوئی لے لیں، آپ اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں کہ ایک مضبوط کڑا ہے، اس کو پکڑ لیا آپ نے، تو آپ گریں گے نہیں اب نا، کیونکہ وہ کڑا آپ کو تھام کے رکھے گا۔ یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو پھسلنے نہیں دے گی۔ اب آپ کے پاس ایک سہارا ہے۔ جب انسان مایوس ہونے لگتا ہے یا سوچتا ہے میرے پاس کوئی سہارا نہیں، میں کدھر جاؤں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کبھی مایوسیوں کے اندھیرے ہوتے ہیں، کبھی گمراہیوں کے اندھیرے ہوتے ہیں، کبھی بے بسی ہوتی ہے انسان کی، تو جب یہ سوچتا ہے نا میں نے اس کڑے کو تھام لیا، میرے ہاتھ میں یہ عروا آ گیا ہے، کنڈا آ گیا ہے، یہ اللہ کا کنڈا ہے، تو بس، جس نے اللہ کا کنڈا تھام لیا تو پھر کیا، یہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، یہ ٹوٹے گا نہیں۔ دیکھیں، اگر کنڈا ٹوٹ جائے، مثلا جس جو ڈوبنے لگا اس نے کنڈا پکڑا ہوا، وہ ہی ٹوٹ گیا، اس کی زنجیر ہی ٹوٹ گئی، وہ کڑا ٹوٹ گیا، تو کیا ہوگا، بندہ ڈوب جائے گا۔ لیکن اس کڑے کو کبھی نہیں ٹوٹنا، بڑی مضبوط جگہ اس کا ہاتھ پڑ گیا، اب یہ اس کو پار لگا ہی دے گا۔ تو اس طرح سے سوچا کریں، جب آپ کو بے بسی آئے، جب کوئی ایسے غم، پریشانی، کوئی مایوسی، کوئی ایسی چیز کہ آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اب میں کیا کروں، تو یہی بات کو سوچ لیا کریں، اس چیز کو دہرا لیا کریں۔ یہ کوئی سنت یا اس سے نہیں ہے، میں اپنے ایسے اس سے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ ذہن میں یہ رکھیں گے تو آپ کو تسلی ہوگی۔ کوئی اس کو کوئی اس سے حدیث یا وہ نہیں سمجھے کہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یہ سوچا کریں اے اللہ میں نے تیرا مضبوط کنڈا تھام لیا، اس کو تو کبھی نہیں ٹوٹنا نا، پھر مجھے کیا پرواہ، پھر میں کیوں پریشان ہوں، پھر آپ کے غم سارے دور ہو جائیں گے۔ کیونکہ عروا، جب یہ جو عروا ہے نا، یہ جب انسان پکڑ لیتا ہے نا، سبحان اللہ، پھر آگ کا آلاؤ بھی، اس میں بھی کوئی اس کو گرا دے تو اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ یاد ہے نا آپ کو کس کی بات ہو رہی ہے، آگ بھی انسان کو جلا نہیں پاتی، آگ بھی اس کے اوپر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھر یا نار کونی بردم و سلام، پھر یہ بات ہو جاتی ہے، اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں بھی انسان پہنچ جاتا ہے نا، اور سمندر کے نیچے اندھیروں میں، گہرائیوں میں وہ مچھلی جا کے پڑ جائے، تب بھی انسان کی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ جب انسان یہ کڑا تھام لیتا ہے نا، پھر چھری کے نیچے لٹا کے بھی اللہ تعالی حفاظت فرماتا ہے۔ अब ये कड़ा इंसान थाम लेता है तो फिरौन की गोद में बिठा के भी अल्लाह हिफाजत फरमाता है, इतना मजबूत कड़ा है। तो इस कड़े को जो थाम ले, फिर वो उसको कोई डरना चाहिए किसी चीज से, उसको कोई गम होना चाहिए, वो मेरा तो हाथ इस कड़े पे पड़ गया, लेकिन कड़े को नहीं छोड़ना। और वाकई अगर हम इससे की तफसीर जो उलमा ने की है कुरान, तो आप सोचें कि जब आप कुरान को थाम लेते हैं, आपके गमों का मदावा ये बन जाता है, दिल का चैन बन जाता है, आपकी दुखों का के लिए शिफा बन जाता, रूह के लिए करार बन जाता। क्या ऐसा नहीं है? फिर वाकई ऐसे लगता है कि एक मजबूत कड़ा थाम लिया, अब मैं नहीं गिरूंगी। ये हमें तसल्ली देता है, ये हमें थाम लेता है, ये हमें चलाता है। वाकई जिंदगी में महसूस होता है, महसूस करें इस कड़े को और कभी इसको लेट गो नहीं करें। इस्लाम है, इसीलिए देखें कितनी दफा ऐसे होता है कि हम किसी मरीज को अस्पताल में देखने जाते हैं, खास तौर पे जो कैंसर वगैरह के होते हैं, तो बहुत ही उन वार्ड्स में मायूसी होती है, बहुत ज्यादा वो। तो जो सुभान अल्लाह हमारे मुसलमान जो मरीज होते हैं, उनके अंदर इतनी तसल्ली होती है, क्योंकि उनका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ होता है, उन वो दुआएं कर रहे होते हैं, वो एक ईमानी कैफियत में होते हैं, और दूसरे मरीजों को देख के इतनी तकलीफ हो रही होती है कि अल्लाह इनके पास तो कोई मजबूत कड़ा ही नहीं जिसको ये थाम ले। वो ऐसे ही बैठे कभी टीवी देख रहे हैं, कभी इधर कितने मायूसी उनके अंदर, और बस वो इसी के अंदर लगे हुए, इनके पास क्या है थामने के लिए? कुछ भी नहीं। और हमारे पास थामने के लिए अल्लाह का सहारा है। कितनी खुशी और कितनी इत्मीनान होता है बड़ी से बड़ी न्यूज सुन के भी उस वक्त, फिर भी इंसान पुरसकून रहता है, क्योंकि वाकई उसने एक कड़ा थामा हुआ है जिसको कभी नहीं टूटना, और बाकियों के पास कोई कड़ा नहीं है। उस वक्त महसूस होता है हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये कड़ा थमा दिया, हम मुसलमान हैं और हमारे पास अल्लाह का ये कलाम है, हम जैसे तैसे भी हैं, जैसे तैसे भी लटके हुए, लेकिन उस कड़े के साथ बस खुद को जोड़े हुए। तो ये कभी हाथ से छूटने ना पाए, कभी छूटने ना पाए। याद रखें, जान जाए तो जाए, लेकिन ये कड़ा कभी हाथ से जाने ना देना, क्योंकि कड़ा कभी नहीं टूटेगा। हाँ, आप छोड़ देंगे तो आप डूब जाएंगे। अल्लाहु वलीयुल्लज़ीन आमनू, अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का। कितना प्यारा दोस्त है अल्लाह, कितना प्यारा दोस्त है कि जो थाम लेता है अपने बंदे को। युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, जब इंसान अंधेरों में होता है ना, तो अल्लाह उनको उसको रोशनी में ले आता है, क्योंकि अल्लाह उनका दोस्त जो है। और अंधेरे किस चीज के? कोई देखे शिर्क के अंधेरों में, कोई कुफर के अंधेरों में, कोई मायूसी के अंधेरों में, मायूसी भी अंधेरा है, कोई गमों के अंधेरों में होता है, गम भी अंधेरे है ना, अल्लाह निकाल के ले आता है। क्योंकि अगर वाकई ईमान है ना, तो अल्लाह वली है, अल्लाह उनका दोस्त है, अल्लाह उनका मददगार है, अल्लाह उनका पुश्त बना है, वो निकालता है। सुभान अल्लाह, कितनी खुशकिस्मती है कि अल्लाह अंधेरों से नूर की तरफ ले आता है, रोशनी में ले आता है, सच्चाई के रास्ते की तरफ, इत्मीनान की तरफ, सुकून की तरफ, हक की तरफ अल्लाह लाता है। देखिए, बाकियों के पास अल्लाह वली नहीं है, ईमान वाले का अल्लाह वली है। तो ईमान वाले को खुश होना चाहिए। आपने कभी महसूस किया कि जब आप जुल्मत में होते हैं तो अल्लाह नूर की तरफ लेता है? और युख्रिजुहुम जो है ना, ये फेल मुजारे है जिसमें तसलसल होता है, तसलसल यानी कंटिन्यूसली, एक दफा नहीं है कि देखिए अगर कोई कुफर में है तो वो तो ईमान में आ गया, एक दफा का निकालना हो गया। लेकिन ईमान में आके भी तो इंसान देखिए कुफर के ये सॉरी जुल्मत के डिफरेंट शेड्स होते हैं ना, डिफरेंट शेड्स हैं, कहीं कुफर है, कहीं शक है, कहीं और कोई मसला है जो मैंने आपको बताया कि मायूसियां है, कहीं एथीज्म है, कहीं मसलन तकलीफ है कोई, कहीं दुनिया की मोहब्बत है। तो ये सारी जुल्मतें हैं, सब जुल्मतें अल्लाह ताला मुसलसल निकालता रहता है, मुसलसल निकालता है। हम ईमान में आ भी गए हैं लेकिन फिर हम किसी एक अंधेरे में चले जाते हैं, कभी गमों के अंधेरों में, कभी कोई और परेशानियों के ऐसे अंधेरे हैं उनमें चले जाते हैं। अल्लाह थाम लेता है क्योंकि वो वली है, वो दोस्त है, वो नूर में ले आता है। फिर कभी आपको महसूस हुआ ऐसा कि अल्लाह मुझे ले आया, वरना मैं अंधेरों के अंदर गिरती ही चली जाती। और वल्लदीना कफरू, और वो लोग जो जिन्होंने कुफर किया उनके भी दोस्त है कुछ। उनके दोस्त कौन है? औलिया ताहूत, उनके दोस्त ताहूत है, वो ताहूतों के साथ लगा। और अत ताहूत है, अलिफ लाम लगा हुआ है, अलिफ लाम का मतलब है कि सारे ताहूत जमा हो गए, एक ताहूत नहीं है, बहुत सारे ताहूत है, तगावी जिसको कहेंगे प्लूरल के लिए, जैसे समझ लें कि बहुत सारे ताबूत जो इनकार करते हैं ना अल्लाह का, फिर एक नहीं, फिर बहुत सारे ताबूत उनके दोस्त बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं फिर उनको? युखरिजूना हुम मिनन नूरी इलज़ुलुमात, वो निकाल के ले जाते हैं उनको नूर से अंधेरों की तरफ। यानी कभी अगर वो काफिर है तो कभी अगर वो इस्लाम की रोशनी देख भी लेता है तो वो ताहूत जो है ना, तगावीत जो बहुत सारे ताहूत हैं, वो उनको छोड़ते थोड़ी है, उनको वापस पुल कर लेते हैं अपने अंदर। वो कहता है कि हाँ वाकई ये बात मुझे बड़ी अपील की, लेकिन वो उसको वापस ले जाते हैं, नहीं 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 छोड़ो तुम, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे, बहुत सारे शकुको शुभात उसके अंदर डाल देते, वापस जुल्मत में ले जाते। तो वो नूर में आने के लिए अगर कभी नूर को देख ही लेते हैं, और ये मुसलमान के साथ भी हो सकता है, मुसलमानों के भी ऐसे मुसलमान भी हो सकते हैं जो इस लेवल पे पहुंच जाएं, जो सही ईमान वाले नहीं हैं, उनके दोस्त भी तगावीत हो सकते हैं, वो भी कुछ रोशनी में आना चाहते हैं या कभी रोशनी देख लेते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द इतने तगावीत होते हैं कि वो उनको सकिन कर लेते हैं दोबारा अंधेरों में। और ये भी बार बार होता है। ताहूत क्या चाहता है? कि ये अंधेरे में ही रहे। और अल्लाह क्या चाहता है? कि इंसान नूर में आ जाए, वो बच जाए। तो जिसने अपने दोस्त ये ताहूत बना लिए, याद रखे ताहूत क्या है, वही जो अल्लाह की बंदगी से रोके, खुद भी नहीं अल्लाह की बंदगी करता, खुद भी नहीं अल्लाह ताला की इबादत करता और दूसरों को भी नहीं करने देता। और मैंने आपको बताया वो कोई भी हो सकता है। तो उलाय का अस्हाबुन नार, ये आग के साथी हैं। हम भी अपने इर्द गिर्द देखें, क्या हमारे इर्द गिर्द तगावीत तो नहीं है? हम फीहा खालिदून, ये फिर जाहिर है जब उनको अंधेरों में लेके जाएंगे तो अंधेरों में रहने वाले फिर अंधेरी जहन्नम में ही जाएंगे। जहन्नम की आग भी तो स्याह काली है। दुनिया में भी अंधेरों में रहे, कहीं जहालत के, कहीं कुफर के, कहीं शिर के, कहीं डाउट्स के, शको शुबे के, कि पता नहीं ऐसा है कि नहीं, पता नहीं ये है कि नहीं, तो भाई यहाँ पे अंधेरों में रहोगे ना तो वहां पे भी आग अंधेरी है, वो लाल नहीं है, सुर्ख नहीं है, अंधेरी है। हम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहने वाले। चले इसकी तिलावत सुने, फिर आगे इंशाअल्लाह ताला चलते हैं।
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.